गणेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक कार्तिक सुबह था 2012
पहला धाम होगा के ऊपर दूसरा था सनातन गोस्वामी और महाराज गोपाल जी का था। इन दोनों नाटकों पर थोड़ा विचार प्रकट होने से पहले मेरे संक्षेप में कार्तिक महीने की चर्चा करना चाहता हूँ। शास्त्र में लिखा है कि जो कार्तिक का महीना है इसका एक और नाम है क्या, दामोदर महीना। ये सब महीनों में सबसे पवित्र है और इस महीने में अगर आप थोड़ी भी भक्ति करोगे तो उसका नतीजा हजार गुना होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सब तुलसी सबसे पवित्र है और सब महीनों में कार्तिक का जो महीना है ये सबसे पवित्र है। और कार्तिक के महीने में हमारा क्या भाव होना चाहिए, कार्तिक के महीने में हमारा भाव होना चाहिए कि हम अपनी सेवा बढ़ाएं। सेवा कैसे बढ़ाओगे, और अधिक हरिनाम और अधिक शास्त्रों का ध्यान और अधिक सेवा और अनेक रूपों से ये प्रयास करना कभी हर जीवन में आगे हो सके। तो आप सब कार्तिक के महीने में यहाँ आए हो तो इस महीने अनेक शुभ उत्सव भी हैं और कार्तिक के महीने में हमारा भाव बनना चाहिए कि हम राधा रानी जी की सेवा करें। और कार्तिक के महीने में हम हमारा ये प्रयास करना चाहें कि किसी प्रकार से और गहराई के साथ भगवान के शरणगत हो जाए। तो इसमें हम देखते हो कार्तिक के महीने में हजारों या लाखों भक्त आते हैं सारे विश्व से वृंदावन धाम में रहने के लिए। और श्री प्रभुपाद भी कार्तिक के महीने में ही पहली बार वृंदावन आए थे। पहले प्रभुपाद बचपन में आए थे और उन्होंने सिर्फ गोस्वामी मंदिरों का दर्शन प्राप्त किया था। फिर 1932 में श्री प्रभुपाद जी आए थे भक्ति सिद्धांत जी से मिलने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु उस समय एक ब्रजमंडल की यात्रा ले जा रहे थे ब्रज में। वो प्रभुपाद आए थे कोसी में भक्ति सिद्धांत जी का उपदेश सुनने के लिए और फिर प्रभुपाद जी फिर से आए थे ब्रज में 1935 में, वो भी कार्तिक के महीने। कार्तिक के महीने में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी से मिले थे राधा कुंड में और वहाँ कार्तिक के महीने में ही भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को अपने पास बिठाया और एक पेंसिल लेकर एक मृदंगा की तस्वीर खींची और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा प्रभुपाद जी से कि अगर भगवान तुम्हें धन देगा तो इस धन से क्या करना, क्या करना, ग्रंथों को प्रकाशित करना। तो वो प्रसिद्ध आदेश जो आप बार बार सुनते हो कई बार मंदिरों में, वो आदेश भक्ति सिद्धांत जी ने दिया था प्रभुपाद जी को कहाँ, कार्तिक के महीने में। और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा जब अगर भगवान धन दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और इस सेवा को क्या नाम दिया था, बृहद मृदंगा। साधारण मृदंगा की आवाज केवल थोड़ी दूर तक ही जा सकती है पर ग्रंथों की विचरण की जो सेवा है इसका प्रभाव दुनिया के कोने तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली में किसी को ग्रंथ बांटो, वो लिखी आगे अपने रिश्तेदार को ऑस्ट्रेलिया में भेज देता है, लॉस एंजलिस में। उसके बाद दिल्ली से तक कहां तक पहुंच गई, लॉस एंजलिस। तो इसलिए भक्ति सनातन जी ने इससे वो बृहद गंगा की सेवा नाम दिया। और इसलिए ये क्योंकि ये हमारे अच्छाइयों की इच्छा थी कि हम भगवान के संदेश को आगे पहुँचाए। और भक्ति सनातन जी हमारे परम गुरु जी ने भी ये आदेश दिया था प्रभा जी को, उनके दूसरे सन्यासी शिष्य को, इसलिए इस संस्था के द्वारा भी बल दिया जाता है हर साल कि हमें ग्रंथों का वितरण करें। इसलिए समाज के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए, तो यह आदेश भक्ति सनातन ने कब दिया था, कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में 1540 में रूप गोस्वामी ने एक 8 इंच का विग्रह बनाया था अपने भतीजे जीवा गोस्वामी के लिए। जीवा गोस्वामी की हार्दिक इच्छा थी कि विग्रह की उपासना की जाए। अपने नाटक में देखा सनातन गोस्वामी भी बड़े प्रभावित हुए थे मदन गोपाल की खूबसूरती से। तो जीवा गोस्वामी इच्छा थी कि एक विग्रह की वो उपासना करें। तो रूप गोस्वामी ने एक मार्बल के पत्थर को लेकर खुद 8 इंच की मूर्ति बनाई और जीवा गोस्वामी को भेंट दिया। और उसके पश्चात रूप जीवा गोस्वामी ने इस विग्रह की उपासना आरंभ की। और कार्तिक के महीने में ही श्रील प्रभुपाद जी ने 1972 में अपने शिष्यों को सारे विश्व से निमंत्रण दिया था। क्या निमंत्रण? आओ वृंदावन में। और उस समय ईश्वर का कोई केंद्र नहीं था भारत में, और खास करके वृंदावन में। और प्रभुपाद जी श्री राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी के समाधि के समक्ष बैठकर रोज भक्ति रसन रस हिंदु, जिसमें अंग्रेजी में नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उस पर उपदेश दे रहे थे अपने शिष्यों को। तो कार्तिक के महीने में बड़े आसानी से अधिक लाभ मिल जाता है। स्कंद पुराण में एक कथा पढ़ते हो, एक चूहा था जो मंदिर में रहता था। और कार्तिक के महीने में कहते हैं भगवान को दिया अर्पण करना चाहिए। अगर भगवान को दिया अर्पण करो जिससे आपको 1000 गुना लाभ मिलता है। तो ये जो चूहा था, ये लोग दिया अर्पण करते थे, दिया अर्पण करके जो थोड़ा सा घी बच जाता था उन प्यालों में, उसे जाकर खाता था खाने के लिए। तो एक दिन एक दिया एक भक्त ने भगवान को भोग लगाया, अर्पण किया था, और उसमें दिया जल रहा था, बोझा नहीं था। तो एक चूहा वो घी को खाने गया, खाने गया तो जो रुई थी वो उसकी जीभ में अटक गई और उसकी आग दिया जल रहा था, उस आग में रुई फंस गई चूहे के मुंह में। तो वो चूहा रुई को निकालने के लिए एक दूसरे नाच रहा था भगवान के विग्रह के सामने, वो कोशिश प्रयास कर रहा था कि रुई हार गिर जाए। और इस प्रकार भगवान के विग्रह के समक्ष वो नाच रहा था, और नाचते नाचते जल गया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान उसकी सेवा से इतने प्रसन्न थे वो जो नाच रहा था रूई को निकालने के लिए, क्योंकि तस्वीर चल रहा था, भगवान ने उस नाच को आज आरती के रूप में स्वीकार किया और उस चूहे को मनुष्य देह प्राप्त हुआ और उसके पश्चात सीधा भगवान के धाम गया। तो आप देख सकते हो कार्तिक महीने का कितना गहरा प्रभाव है। और कार्तिक महीने में कहा जाता है हमें वृंदावन धाम में रहकर भजन करना चाहिए। भगवान इस्कॉन के भी कई भक्तियां आए हैं कार्तिक रशिया से, जो चौसठ मानव लोग जन्म कर रहे हैं वृंदावन में रहकर। तो आप कहोगे फिर हम सबको यही रहना चाहिए, जाना ही चाहिए। प्रभुपाद जी ने साथ में ये आदेश दिया है कि जिस मंदिर में राधा कृष्ण की उपासना हो तो मंदिर आपका दिल्ली या बॉम्बे या लंदन में नहीं है, वो मंदिर क्या बन जाता है, वृंदावन धाम। तो आप लोग इस कार्तिक के महीने में दिल्ली में रहकर भी अभी भक्ति को बढ़ा सकते हो। इस महीने हमें तपस्या बढ़ानी चाहिए, भोजन कम खाना चाहिए, हरे नाम का उच्चारण बढ़ाना चाहिए, कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। अगर आप इस महीने आप श्रीमद् भागवतम को सुनो तो शास्त्र में कहा गया है इसके द्वारा वही लाभ मिलेगा जो कि आपको मिलेगा सारे वेदों का अध्ययन करने के द्वारा। अगर आपको ये कहा जाए बैठकर सारे वेदों का अध्ययन करो आप कर पाओगे, पर अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो कि सारे वेदों शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात भी होता है। तो कार्तिक का महीना भगवान राधा रानी जी की खास कृपा है, थोड़ी भक्ति करोगे उसका नतीजा उदाहरण देते थे, जैसे कि कहीं कभी कभी दुकान में सेल होती है, बिक्री 100 रुपए की वस्तु 10 रुपए में बिक्री है। तो कार्तिक के महीने में भक्ति का भाव गिर गया है, थोड़ी सी भक्ति करोगे और 1000 गुना लाभ मिलेगा। तो आप सब कार्तिक के महीने भक्ति करो ये सोचो कि कार्तिक में मैंने भक्ति की है अब तो 1000 गुना लाभ मिलेगा और बाकी 11 महीने विश्राम करो। जैसे कि कोई स्टोर में दुकान में माल सस्ता बेचते हैं, क्यों इस भाव से बेचते हैं कि आप उनकी दुकान में आओगे आज सस्ता माल लोगे पर कल महंगा माल लेने भी आओगे। जैसे अमेरिका में जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर हैं जो दवाइयां लोग ज्यादा खरीदते हैं एस्पिरिन हो या कुछ, उसको आधे दाम से भी कम में बेचते हैं। शिष्य है जो कह रहा था नुकसान में बेचते, क्यों वही उनका यह भाव रहता है वो दवाई सस्ती में लेने आएगा तो बाकी वस्तु भी फ्री रहेगा वो महंगे भाव काम पर। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कार्तिक के महीने में लाभ मिलेगा, पर हमें और गहराई के साथ कार्तिक के महीने में भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। और जो हमारे अनर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जिनके प्रभाव के कारण हम भगवान के चरण का नहीं हो पाते, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, क्या दूर करना चाहिए। तो कार्तिक के महीने में हम सबको बड़ी गहराई के साथ ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ हमारी कमजोरियां हैं, जहाँ हमारा भौतिक आकर्षण है जिसके कारण हम जन्म के निबंधन में फंसे रहते हैं, ये हमें दूर करना चाहिए। भगवान के 5 स्कंद में हमें भगवान विष्णुदेव जी का उपदेश प्राप्त होता है ब्रह्मानंद देव ऋषभ देवी स्वयं भगवान थे, इनके 100 पुत्र थे और उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया कि आप भागवतम के 5 स्कंद में प्राप्त करते हो। तो उपदेश देकर कहा यूनाम ब्रह्मता कुरुदेव कर्म, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो मूर्ख है, वो ये नहीं जानता कि आज जो भय है उसके पास वो केवल उसे कष्ट दे रहा है। आज आप देखो सारे विश्व में कष्ट ही कष्ट है या नहीं? आप सबने पढ़ा अमेरिका में वो कितना बड़ा तूफान आया था, 900 मील लंबा तूफान, हालांकि उस देश में हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तो तूफान को रोक पाए? आपके आंध्र और तमिलनाडु में 2 दिन पहले भी बड़ा तूफान आया। तो भौतिक संसार में 7 प्रकार के क्लेश हैं, जैसे जानते हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। तो आप सबके सौभाग्य है कि आप कृष्ण भक्ति में जुड़े हो, इसका आप लाभ उठाइए। मुझे कहा गया था कि सभा में कई हैं पुराने जुड़े भक्त हैं, लगभग आगे हैं जो कि अभी जुड़ रहे हैं भक्ति में। तो आप सबका ये सौभाग्य है, माता बनी देखो भगवान जी गुरु कृष्ण के पाए भक्ति महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को देश से कहा, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज या भक्ति के ज्ञान की आवश्यकता, भक्ति के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप सब अत्यंत भाग्यशाली हो कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। और कार्तिक का महीना खास करके भक्ति बढ़ाने का महीना है। इस महीने में भक्ति बढ़ाना भी बड़ा सरल है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी प्रयास करोगे तो राधा रानी जी आपकी इतनी सहयोग देंगी कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो आप सबका यह प्रयास होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा अगर आप श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाओ। जैसे कि बीज उगता है जब आप उसे पानी पिलाते हो, उसी प्रकार ये आप सबका भी अनुभव है कि जब आप ध्यान से जाप वगैरह करते हो तो उस दिन आपका भक्ति का उत्साह ऊंचा रहता है। सच बात है, सच है या झूठ? और जिस दिन आप जाप नहीं करते उस दिन माया खचुलो दिखती है, और जिस दिन जाप करते हो भक्ति खचुलो दिखती है। अब वृंदावन में आए हो, साधु संत भक्तों की संगत में है, तो आप भक्ति खचुलो दिखती है। जब आप वापस दिल्ली जाओगे और साधु संत का लाभ नहीं उठाओगे तो फिर माया खचुलो दिखेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें भक्ति के बीज को पानी पिलाना चाहिए हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। तो इस कार्तिक के महीने में अगर आप चाहो तो सोमवार से ज्यादा भी कर सकते हो। जब श्री प्रभुपाद जी ने पहले केंद्र की स्थापना की अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा 64 माला दिन में करने के लिए। वो दिनों में सिर्फ कोई चुने हुए अमेरिकन शिष्य थे। अमेरिकन शिष्य ने 64 माला करने का प्रयास किया पर कोई नहीं कर पाया। तो 3-4 दिन के बाद ये शिष्य सब प्रभुपाद जी के पास लौटे और कहने लगे, स्वामी वेरी डिफिकल्ट टू डू 64 राउंड्स, वी आर अमेरिकन। हम अमेरिकन है, हम 64 माला नहीं कर सकते। The Prabhupada said, okay, do 32 rounds. But this one, कुछ दिन बाद वो आए और कहने लगे, स्वामी, we can't do 32 rounds also. Too difficult. फिर प्रभुपाद ने कहा, Taking ground and no less, final. कभी कभी भी लोग पूछते हैं प्रभुपाद जी ने 64 से 16 घटा दिया, हम 16 से 4 नहीं घटा सकते। तो प्रभुपाद जी ने 16 माना और बिल्कुल कम नहीं, जो एडजस्टमेंट करना था प्रभुपाद जी ने कर दिया है भविष्य के 10,000 सालों के लिए। तो 10,000 साल के पश्चात पृथ्वी पर तो धर्म हो गए। तो भक्ति कभी जुगेगा शरणम कीर्तनम से। तो अगर आप सब चाहते हो कि हमारा भौतिक आकर्षण घटे, अगर आप चाहते हो काम क्रोध लोभ मोह मन मसले के प्रभाव से आप बचो, हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा मार के जाप करो, ध्यान से करो, और हो सके तो बढ़ा दो। अगर आप पूरा साल नहीं बढ़ा सकते तो कार्तिक के महीने में बढ़ा दो, और अगर आप दिल्ली में हो तो श्री राधा पढ़ते शादी अलीगढ़ मन 8 महीने अलग स्थानों में जाओ, क्योंकि जहाँ राधा कृष्ण की स्थापना हुई है प्रभुपाद के शरणों में वो स्थान क्या बन जाता है? वृंदावन धाम। तो प्रभुपाद जी की अनेक गुणों में एक गुण ये था वो वृंदावन धाम को ले गए सारे विश्व में। प्रभुपाद भारत में पहली बार लौटे अब 100 विदेशी शिष्यों के साथ, तो वृंदावन धाम भी आए थे और वृंदावन धाम की नगर पालिका ने उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया, और स्वागत करते हुए कहा ऐसी भक्ति वाला स्वामी वृंदावन को विश्व के हर कोने में ले गए। तो वृंदावन का अर्थ है वो स्थान जहाँ परम भगवान का गुणगान हो। तो इन मंदिरों में बकायदा आया करो आचार्य बेटा का दर्शन प्राप्त करने के लिए, संगत प्राप्त करने के लिए। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि साधु संग में रहो, जैसे कि आप मकान बनाते हो तो साथ में दीवार भी बनाते हो, है ना, कि कोई गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग में रहो, प्राप्त होती है, और इस प्रकार साधु संगत प्राप्त होता है। और आज भक्ति वृक्ष नाम के माध्यम से प्रचार भी बढ़ रहा है, विश्व के कई देश हैं जैसे चाइना मिडल ईस्ट यहाँ के मंदिर नहीं खोल सके, पर साधु संघ भक्ति वृक्ष इन सब कार्यक्रमों के द्वारा हजारों भक्त बनते हैं और बनते जा रहे हैं। तो साधु संघ का नाम चैतन्य महाप्रभु ने आगे ये भी कहा कि भक्ति का जो सुंदर बगीचा है ये नष्ट हो जाएगा अगर आप एक पागल हाथी को अंदर आने दोगे। और इसका क्या अर्थ है? वैष्णव अपराध से बचने के लिए। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए, चाहे आप सीनियर भक्त हो या जूनियर, हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं किस प्रकार वैष्णव अपराध का भयंकर परिणाम होता है। आपने बड़े सुंदर रूप से नाटक में देखा मोहन और महाप्रभु की कथा। तो जैसे मैं कहा कुछ समय पहले, हम सब एक रूप से छोटे मोगा हैं। मोगा की क्या खूबी थी? क्या खूबी थी? वैष्णव की कमजोरियों को निकालना। उनकी खूबी क्या थी? वैष्णव की गलतियों कमियों को निकालना, उनको कमियों निकालने में बहुत आनंद आता था। इसी प्रकार आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो एक और कथा रामचंद्र पुरी की, जो भी भक्तों की खास करके सन्यासियों की कमियों को निकालकर बड़ा आनंद प्राप्त करते थे। तो मोगा इनके ससुर थे सर्वोपरि भट्टाचार्य, जो कि बहुत चक्रवर्ती की मायावानी थे, उन्हें बृहस्पति का अवतार माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि सब अवतारों में सबसे दयालु हैं, उनके प्रयास से संग से उनका उद्धार हुआ। तो वो स्वीकार करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान है। तो अमोघा को बड़ा आनंद आता था भक्तों की कमजोरियों को निकालकर। तो इसी प्रकार हम सभी ये कमजोरियां हैं, अगर हम किसी कमजोरी निकालें तो हमें आनंद आता है। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें सब वैष्णव के गुणों पर ध्यान देना चाहिए, गुणों पर ध्यान दोगे तो अच्छा सम्मान रहेगा। अगर हम केवल दो कटा की वृक्ष निकालने में रुचि लेंगे तो रिश्ते भी बिगड़ जाएंगे। तो इस अपराध से हमें बचना चाहिए। तो मोगा की कमजोरी थी फॉल फाइंडिंग, दूसरों के आचरण में कमजोरी निकालना। जब सर्वमोहन भट्टाचार्य की जो पत्नी थी, उन्होंने 80 चीजों 80 सब्जियों को तैयार कर दिया एक घंटे में। आजकल तो हम लोग घरों में माइक्रोवेव कुकर रखते हो, माइक्रोवेव कुकर में आप बनाते हो तो कहते हैं माइक्रोवेव से थोड़ी कैंसर का खतरा खतरा है, क्या लोग इसकी परवाह नहीं करते। माइक्रोवेव तो उनकी पत्नी माइक्रोवेव कुकर से भी तेज बना रही थी, 80 सब्जियों को बना देती थी एक घंटे में। तो बड़े आदर के साथ वहां प्रभु जी की प्रशंसा के लिए बड़ा भंडारा तैयार किया था। और मौका दीवार के आगे खड़े होकर सुनता था जो वर्तला गीत रहा था, सर्वोर वर्णाचार्य और महाप्रभु का। इस भावना से कुछ नुक्स मिल जाए तो मैं सारे विषय को सुनाऊंगा, इधर भोगी सन्यासी है। और एक दिन भोजन खाते समय सर्वोर भट्टाचार्य को अंदर जाना पड़ा पति का सहयोग देने करने के लिए। तो मोगा ने देखा इतना बड़ा भंडारा, कहा ये कोई सन्यासी है, ये तो 12 आदमी का भोजन अकेले खा रहा है। और फिर इस मोगा को क्या हो गया, कॉलरा की बीमारी, मरने वाला था। तो गोपीनाथ आचार्य जो कि सर्वोर भट्टाचार्य के उसे महाप्रभु ने पूछा कैसा है मोगा का स्वास्थ्य। तो उन्होंने कहा वो तो बहुत बीमार है, मरने वाला है। तो महाप्रभु गए उनके पास, उनके छाती पर हाथ रखा, कहा कि ब्राह्मण का हृदय शुद्ध होना चाहिए, जब तक हृदय में मैल रहेगी भगवान वहां नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर कोई गंदा स्थान हो, जैसे भारत में कूड़े कूड़े में आप देखते हो कूड़ा और कचरा, तो आपको कोई कहे कचरे के पास बैठकर खाओ, आप खाओगे खाओगे? तो उसी प्रकार भगवान उस हृदय में विराज करना पसंद नहीं करते जिस हृदय में ईर्ष्या का भाव हो, द्वेष का भाव हो, कमजोरी निकालने का भाव हो, और जिन ज्ञान की अनेक प्रकार के भौतिक भाव हो, तो उस हृदय में भगवान रहना पसंद करते हैं नहीं। तो जब आप हरि नाम द्वारा हृदय की मैल को दूर करते हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा शिक्षा के पहले श्लोक में चेत दर्पण मार्जनम, भगवान के नामों का उच्चारण का पहला लाभ क्या है, क्या है पहला लाभ, हृदय की जो मैल है ये दूर हो गया। आज आप देखो कृष्ण भक्ति के केंद्र विश्व के हर कोने में है। आज शायद ही कोई देश है विश्व में जहां की इस्कॉन की मंदिर नहीं हो। हमारे दिल्ली का व्यापारी एक स्वीडन में एक छोटे गांव में अपने माल एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे कह रहा था उस गांव की आबादी है 200 बस, और 8 हरे कृष्ण के भक्त है गांव में। मुझे सोचना है तो चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी में जितने नगर है गांव है सब जगह क्या हरिनाम पहुंचा। उसके बाबा के प्रयास से दुनिया के हर कोने में ये हरिनाम पहुंचा है। तो हमें अगर हम इस हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें इन ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। आप चैतन्य चतुर्विधा में कथा पढ़ते हो, एक समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो शाम को शुरू होता था कार्यक्रम, सुबह समाप्त होता था। एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में श्रीवास के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई। उसने कहा इस श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। और इसने श्रीवास के दरवाजे के सामने शराब और दुर्गा की पूजा का सामान रख दिया। श्रीवास ने जब सुबह दरवाजा खोला तो देखा शराब मांस वगैरह। श्रीवास ने कहा पड़ोसी देखो, मैं तो दुर्गा का पूजा उपास हूं कृष्णा का नहीं। भक्त ने कहा नहीं नहीं ये सच नहीं है। इस ब्राह्मण को घेरी कोड़ की बीमारी हो गई, नहीं तो हम भक्तों से पूछ सकते हैं। साथ में अपने सनातन गोस्वामी का भी बड़ा सुंदर नाटक देखा। सनातन गोस्वामी भारत के सबसे धनी राज्य के लगभग प्रधानमंत्री के समान थे। वो थे उनके भाई थे सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी। आज से 500 साल पूर्व सबसे धनी देश विश्व का अमेरिका नहीं था, भारत था। और भारत का सबसे धनी स्थान था बंगाल का स्थान। और उस समय बंगाल की आबादी लगभग 99% हिंदू थी। तो राजा होशियार था, उसने जबरदस्ती ऐसे लोगों को जोड़ा जिनका समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। तो रूप और समाज दोनों जुड़े भगवान की भक्ति राजे के शासन में पहले रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी और फिर सनातन। रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। और उन्होंने इस संपत्ति को बांटा, 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को और 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। यही उदाहरण उस वैश्य, एक वैश्य थी जिनको उद्धार किया था हरिदास ठाकुर ने। और जब उस वैश्य का उद्धार होने के बाद उन्होंने भी अपनी संपत्ति किसी प्रकार से बांटी। थोड़ी देर बाद सनातन गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी। पहले तो उन्होंने राजा को सूचना भेजी कि मैं बीमार हूँ। राजा ने कहा बीमार है, युद्ध करने जाना है उड़ीसा में, और एक भाई छोड़ गया है नौकरी, दूसरा दफ्तर नहीं आ रहा, कौन सा भरेगा काम को। तो राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, जाके देखो क्या बीमारी है। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा ओ सनातन तो 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो राजा ने कहा वापस आओ नौकरी करने के लिए। तो सनातन की इच्छा नहीं थी। फिर सनातन को जेल में डाला, यहाँ से वो नीचे लंबी करता था। तो सनातन गोस्वामी कि ब्रज में आए थे, आज हम जब ब्रज में आते हैं हम बड़े आसानी से कहते हैं हाँ इस स्थान में भगवान ने ये लीला बताई या ये भी लीला बताई, ये सब हम कर सकते हैं, इसका भाव है कितने महत्वपूर्ण उनके साथ है। हालांकि एक समय रूप और सनातन के पास इतना धन था, राजा सम्मान सुविधाएं थी, पर जो ब्रह्म जब वो ब्रज में आए तो मन फिर करके धीरे थे, अलग अलग घरों घरों में जाते थे जैसे मधुमक्खी थोड़ा सा भोजन लेती है तो थोड़ा थोड़ा स्थान लेकर अलग से मधुकर करके वो यहाँ निवास कर रहे थे, और मधुकर करते करते वो चोबे जी के घर में पहुंचे जहाँ के उनका दर्शन हो गया इसके साथ श्री श्री राधा मधु गोपाल के साथ। और फिर जब उस व्यापारी कपूर ने धन कमाया, वो धन जब आके दिया तो सनातन ने क्या कहा, धन से क्या बनाओ, मंदिर बनाओ, तो मंदिर की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति भगवान का मंदिर बनाता है योग्यता है उसको भगवान की इसी कृपा प्राप्त होती है। सनातन गोस्वामी के साथ रघुनाथदास गोस्वामी वृंदावन के छह गोस्वामी हैं, ये छह गोस्वामी जो हैं ये मंझारी के अवतार हैं, और मंझारी उन्हें कहा जाता है जो कि भगवान गोपियों का सहयोग देती है राधा रानी जी का सेवा करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने उस व्यापारी से कहा तुम भगवान का मंत्र, मैं कभी कभी मेरे लीज में जाता हूँ और मेरे लीज में आप देखोगे हर 10 कदम पर एक मस्जिद है, हर 10 कदम आप 2 बिल्डिंग चलोगे एक मस्जिद दिखेगा। तो मैंने वहाँ के भक्तों से पूछा ये मस्जिद कौन बनाता है, सरकार कहते नहीं आरम्भ तो धन कमाते हैं, पहले मस्जिद बनाते हैं फिर अपना घर। हमारे हिंदू में क्या रिवाज है, पहले अपना घर, बच्चों का घर, ससुर का घर, भगवान का घर, तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी मॉस्को में, आपने मॉस्को नाम सुना है, मॉस्को में लगभग 2000 चर्चेज हैं, और अभी मॉस्को में 200 नए चर्च एक साथ बन रहे हैं एक साथ। तो मैंने पूछा ये कौन बना रहा है, जमीन सरकार देती है मुफ्त पर धन सर्वे पानी लोग होते हैं, तो हमें भी बड़े उत्साह के साथ भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। थोड़े समय पहले आपने सुना कि हम रोहिणी में द्वारका में मंदिर बनाने जा रहे हैं और गुड़गांव में भी मंदिर बनते हैं समाज के सुधार के लिए, समाज के उद्धार के लिए। तो कार्तिक की महिमा के कार्तिक महीने की महिमा हमने सचेत में आपको सुनाई, और इस महीने का एक और नाम भी है जो है दामोदर महीना। हम दामोदर की लीला आपको कल सुनाएंगे 5:30 बजे बंद करना। तो दामोदर जी की लीला सुनाने वाले थे तो कल सुनाएंगे। तो आज सबसे निवेदन है कि अगर आप प्रोग्राम अभी समाप्त नहीं करोगे तो आप दामोदर से कभी नहीं पहुंच पाओगे। दामोदर लीला तो रंगी लीला, तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनका ज्ञान आप भगवतम के 10वें स्कंद में प्राप्त करते हो। भगवान की दामोदर लीला से आप सब प्रसिद्ध हो, परिचित हो। यशोदा माता मथन कर रही थी दही का मक्खन बनाने के लिए, क्यों? उनको पता था उनके बेटे को मक्खन का बहुत शौक है, पर साथ में उनके मन में एक शक भी था, क्या मेरा बेटा दूसरों के घरों में क्यों जाता है मक्खन चुराने के लिए? क्या मेरे घर के मक्खन में कुछ कमी है? नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। कितनी?
9 लाख।
तो 9 लाख गायों में 100 गायें जो थी वो बहुत स्पेशल थी, हर गाय से अलग फ्लेवर का दूध निकलता था। जैसे आपने अगर दूध में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालना है तो आपको दूध में स्ट्रॉबेरी डालना पड़ता है ना, पर ये जो 100 गाय थी इनके द्वारा जो दूध निकलता था हर गाय का अलग अलग प्रकार का फ्लेवर था दूध का, और खिलाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के घास थे उसमें, ये नहीं आज जैसे एक ही प्रकार का घास है। तो वैसे तो यशोदा माता महारानी है, क्योंकि घर में अनेक नौकर थे, वो किसी नौकरानी को कह सकती थी आप मक्खन निकालो, पर यशोदा माता ने दूसरे दासियों को दूसरी सेवाएं दे दी और खुद कहा मैं खुद मक्खन लोगे, हाँ मक्खन निकालोगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये चिंता थी कि मेरा बेटा पड़ोस के मकानों में क्यों जाता है मक्खन लेने के लिए, ये उनके मन में क्रोध था। तो भगवान जाते थे जैसे हमारे आचार्य ने समझाया है, मक्खन खाने के लिए नहीं, वो जाते थे पड़ोस में क्योंकि उनके गोपियों का स्नेह था भगवान के प्रति। जो पड़ोस की गोपियां थी उन सब के मन में यही भाव रहता था, हमारा बेटा भी कृष्णा जैसे हो, हर के ऐसे बेटा प्राप्त हो। तो जाते थे अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, मक्खन चोरी करने के लिए, मक्खन चोरी करने के बहाना बन गया था। और यशोदा माता जब शरीर का लॉर्ड मथन कर रही थी तो साथ में क्या कर रही थी? भगवान की लीलाओं का गुणगान, क्योंकि आप भागवतम के 10 स्कंद में पढ़ते हो, इस लीला के गुजरने से पहले अनेक लीला गुजर गई है। पूतना राक्षसी का वध हुआ, चिनावादा शक्रसुना, भगवान ने पूरे विश्व का दर्शन किया अपने मन में अपने मुंह में, और जब इन सूरों का वध हुआ तो ब्रजवासी क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे ये कहीं देवता तो नहीं है, इस पर लगता है नारायण की खास कृपा है, ये भाव रहता था उनमें। क्योंकि युग माया शक्ति के द्वारा जो भगवान की शांति भी है वो भी नहीं पहचान सके कि स्वयं भगवान है। अगर उनको पता होता कि स्वयं भगवान है तो रास्ता तो अलग हो जाता। योग माया शक्ति के द्वारा उनके साथी भी ये पहचान नहीं पाते कि उनका असली स्वरूप क्या है, क्योंकि भाई बालराम उन्हें पता था कि तू है मेरा बड़ा गुरु, मेरा बड़ा भाई। तो यशोदा माता मक्खन बनाने के समय भगवान की लीला का स्मरण कर रही थी। तो इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम सब भी कुछ न कुछ काम तो करते हैं, धंधा करते हैं, घर चलाते हैं, रसोई बनाते हैं, तो हम ये कार्य करते करते हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि यशोदा माता एक तरह से दही तैयार कर रही थी, दही से मक्खन बनाना था, साथ में क्या भगवान की लीलाओं का उच्चारण कर रही थी। तो आप कहोगे हमें तो लीलाओं का स्मरण ही नहीं होता तो उच्चारण कहाँ से कर सके? तो आपको कभी कभी खास छूट दी गई है, आप ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो, इसमें सारी लीलाएं भगवान की आ जाती है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण आप हर स्थिति में कर सकते हो, हर कार्य तो करते करते कर सकते हो। जब से जाओ मुहूर्त में तो मुहूर्त चलाते चलाते हरे कृष्ण करो, पर वो मुहूर्त चलाते चलाते हरे कृष्ण करोगे उसको जाग के कोने में नहीं गिरना, वो एक्स्ट्रा है। स्कूटर चला कर जा रहे हो तो सर स्कूटर चलाते चलाते जाग कर सकते हो, पर कोटा भी नहीं गिरना। कहने का तात्पर्य यह है जैसे निशुला माता अपने हाथों से भगवान के लिए मक्खन तैयार कर रही थी क्योंकि उनको विश्वास नहीं था क्योंकि नौकर इतना अच्छा मक्खन तैयार कर सकेगा, क्योंकि उनमें यही भाव था मेरे किसी प्रकार से मेरे बेटे को पड़ोस के घरों में जाने से रोकना है। और वो साथ में भगवान के लीला का विचारण करेगा। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं और इन लीलाओं के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है कि कृष्ण भगवान परम भगवान भगवान के दसवें स्कंद में भगवान की लीलाओं का ज्ञान मिलता है और बाल लीला से आरंभ होता है, फिर आगे जाकर रासलीला का वर्णन है। ये नहीं कि हम सीधा रासलीला पर पहुंचे। तो इसलिए माता मक्खन तैयार कर रही थी, भगवान सो रहे थे। ये मक्खन तैयार कर रही थी, ये लीला बीती थी दिवाली वाले दिन और सुबह के समय, सुबह के भगवान सो रहे थे जब माता मक्खन तैयार कर रही थी। भगवान गहरी नींद में थे तो जब भगवान उठे तो उन्होंने देखा उनकी माता है नहीं है, तो रोने लगे। फिर आए अपनी माता के पास और उन्होंने क्या पत्थर फेंककर मूर्ति को तोड़ दिया और उनकी भावना क्या थी माता के स्तन से दूध पीना। तो माखन फिर उन्होंने बाटा बंदरों को सबको, और क्योंकि माँ दूध उबल रहा था चूल्हे में, माता को बेटे को नीचे रखकर दूध उठाने का जाना पड़ा और बेटे को और दुख हुआ, रोने लगा और गुस्से में पत्थर मारकर मटकी तोड़ी। मटकी इतनी अच्छी तरह तोड़ी कि माता को आवाज आई भी नहीं। आप अगर कुछ मटकी तोड़ते हो तो आवाज दूर तक जाती है, लेकिन भगवान ने मटकी तोड़ी तो आवाज माता को पता ही नहीं लगा। जब वो वापस आई उन्होंने देखा ये चूड़ी हुई, तो भगवान के पीछे भागी। भगवान भी एक तरफ से बंदरों को मक्खन खिला रहे थे और फिर चारों तरफ देख रहे थे, उन्हें पता था कि मेरी माता आएगी मेरे पीछे। उनके फुटप्रिंट्स को देखकर वो समझ गए कि मेरा बेटा ही मेरे बेटे की शरारत है और इस रास्ते से वहां पहुंच जाए। यशोदा माता गए उनके पीछे छड़ी लेकर, और जब भगवान ने देखा माता छड़ी के साथ आ रही है तो घबरा गए, लेकिन रोने लगे। माता ने छड़ी को फेंक दिया और माता ने कहा अब मुझे इसे बांधने दो यार, और जब मैं इसको बांधूंगी फिर जाकर मैं अपने बेटे के लिए मक्खन तैयार करूंगी। और उन्होंने सोचा मैं खुद मक्खन तैयार करूंगी, मुझे इसे बांध दो, क्योंकि अगर मैंने नहीं बांधा तो बेटा इस समय इतने गुस्से में है घर छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग जाएगा, फिर उसको ढूंढने में कितने घंटे जाएंगे। तो उन्होंने बेटे को बांधने का प्रयास किया। पहले तो उन्होंने घर में जो रस्सी थी उसे ली और उन्होंने देखा सब रस्सी को जोड़ दिया। पहले तो जब भगवान भाग रहे थे एक घर से दूसरे घर वगैरह, माता उन तक पहुंच नहीं सकी तो बाद में पकड़ लिया। सब रस्सियों को जोड़ा, सब रस्सियों को जोड़ने के बाद ये क्या अनुभव था, ये रस्सियां कितनी छोटी निकल रही थी, हाँ दो और जो दूसरी टोपियां थी हंस रही थी, कह रही थी देखो ये माता छोटे बच्चे को भी बांध नहीं सकती। और माता प्रयास कर रही थी, पसीना निकल रहा था, फूल सिर से गिर गए थे, तो माता बेचैन थी, खुद आश्चर्य थी। सब रस्सी को जोड़ रही हूं, जब भी रस्सी दो उम्मीद छोटी नहीं पड़ गई। तो हमारे आचार्यों ने हमें इस विषय पर कहा है, एक उम्मीद का अर्थ है कि आप प्रयास करोगे तो ही भगवान को समझ सकोगे। और भगवान को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए। कई बार हम सोचते हैं प्रयास किए बिना हम भगवान को समझ लेंगे। भगवान को समझना है तो ये प्रयास करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं सर्वधर्म प्रति एकम्। भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो मेरी शरण में आओगे तो ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान ये नहीं कहते गलत काम करो मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। भगवान कहते हैं ऐसे, भगवान कहते हैं मन मन भाव मन भक्त मन याद मन नमस्त करो मामे वाचनी सत्य देव पति जन बेहोश हुए। मेरा भाग करना, मेरी चिंतन करना, मेरे उपास करना, फिर मैं बिना शंका के तुम कहां लौटोगे? मेरे धाम में लौटोगे। तो अगर आप गंभीरता के साथ प्रयास करोगे परम भगवान को समझने के लिए, वे भगवान प्रसन्न होकर आपको सुविधा देंगे, जिसके द्वारा आप दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो प्रयास करना है कि नहीं करना? तो कार्तिक के महीने में अगर आप थोड़ा भी प्रयास करोगे तो राधा रानी जी की कृपा से आपको इतनी सुविधा प्राप्त होगी कि आप इस मार्ग में आगे बढ़ सको। तो सब रसों को जोड़ा तो मेरा काम। फिर भगवान ने कहा मेरी माता ने इतना प्रयास किया है, सब गोपियां हंस रही हैं, उन्हें मुझे बांधने दो। फिर माता ने बेटे को बांधा। ये दामोदर लीला बीती थी हमारे आचार्यों के अनुसार दिवाली वाले दिन। तो दिवाली भी कब आती है? कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक के महीने में प्रभुपाद जी ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। तो इस महीने का एक और नाम है दामोदर महीना। इस महीने रोज हम दिया अर्पण करते हैं भगवान को, साथ में दामोदर शिखा का उच्चारण करते हैं। और इस दामोदर शिखा में भगवान की दामोदर लीला का संक्षेप में बड़ा सुंदर वर्णन है। आप सब जब वृंदाव में हो दिया अर्पण करो, जब आप दिल्ली वापस लौटो, जब भी आपके पड़ोस के मंदिर में जाकर इस महीने रोज अगर आप दिया अर्पण कर सको तो आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। श्री दामोदर और दशरथ की। और इस महीने हमें भगवान की दामोदर लीला दिन रात चिंतन करते रहना चाहिए। और जिस प्रकार विश्वधर माता ने प्रयास किया अपने भगवान को बांध सकी, उसी प्रकार अगर प्रयास करोगे भगवान के शरणागत होने के लिए भगवान भी आपका सहयोग करेंगे। प्रभु जी कहते थे यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक टेन स्टेप्स टुवर्ड्स यू। आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे आपको भगवान 10 कदम उठाएंगे, आपको सहयोग करेंगे, जिसके माध्यम से भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। हमारे साथ हमारे गुरु भाई दामोदर श्रीराम प्रभु भी आए हैं। आप सब परिचित हो, ये आपके दिल्ली में दूसरे भक्त है। पहले थे कृष्ण गोपाल प्रभु, दूसरे थे श्रीराम, साथ में नटवर प्रभु,
धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण।